चौधरी था, उसने बम फेंका था, दो लोग मारे गए, पकड़े, क्या इन लोग पे मका को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, चार लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए, उनके लिए मका कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, चार लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे, कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं, वक्त की कमी होने की वजह से। मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे, यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो जेल में डालो। गुजरात राइड जिसने किए, बॉम्बे राइड जितने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते, अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ है, उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइड वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइड्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइड्स को रोक सकती, टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है? 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा, तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन मुजाहिद लोग है। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुजदिल लोग है, मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुजदिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है? ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया, अलकायदा व्हाट आर योर व्यूज? आई डाउट वेदर अलकायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है, कहने में जानता नहीं हो, लेकिन है मुसलमान का गैर मुस्लिम है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखते ना तो गैर मुस्लिम लोग है, जो भी है नाम तो बिल्कुल गलत है, वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अलकायदा हो, बिन लादेन हो, कोई भी हो, सामने आओ। मेनी अ टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया, ना इंडियन है ना मुजाहिद है, मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या नहीं? चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर दो, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर तीन, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो, अगर पकड़ ले इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। ये जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बेकाय में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह, सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी ख़त्म होने वाला है। इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हू वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, दे फेल टू रियलाइज दैट द इस्लामिक बॉम्ब, द बॉम्ब ऑफ पीस हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉप्ड, इट फेल द डे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न। एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर साहब की इंतहाई मालूमाती तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा सेशन शुरू होता है, ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुकर्रर से सवाल कर सकते हैं और मुकर्रर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب مائک نمبر 1 اور بیچ میں درمیان میں مائک نمبر 2، مائک نمبر 2 اور خواتین کے حصے میں مائک نمبر 3، مائک نمبر 3 ہے۔ انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح سے رکھی جائے گی کہ پہلا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 3 یعنی خواتین کی جانب سے ہوگا، دوسرا سوال مائک نمبر 2 یعنی درمیان سے ہوگا، اور تیسرا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 1 یا مائک نمبر 1 سے ہوگا۔ اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہماری مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں، اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری یعنی نامناسب ہوا تو اس کو رد کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے۔ اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مائک نمبر 3 خواتین کی جانب سے۔ اگر خواتین میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو خواتین والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔
السلام علیکم، میرا نام سمیتا ہے، میں سروس کرتی ہوں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں۔
بہن، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟
جی میں مانتی ہوں۔
آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟
جی میں مانتی ہوں۔
کیا آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟
جی نہیں، میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔
یہ ضروری ہے کیونکہ کسی پہ زبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس دیش میں بھی ممانعت ہے لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ پیس ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔
جی،
اشہد اللہ الہ،
اشہد اللہ الہ
الا اللہ،
الا اللہ،
واشہد،
واشہد
ان،
ان
محمد،
محمد
رسول اللہ،
رسول اللہ۔
میں گواہی دیتی ہوں،
میں گواہی دیتی ہوں
کہ اللہ کے علاوہ،
اللہ کے علاوہ
کوئی معبود نہیں،
کوئی معبود نہیں، اور
محمد،
محمد
صلی اللہ،
صلی اللہ
علیہ وسلم،
علیہ وسلم
اس کے
آخری
پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے۔
شکریہ۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا پڑھیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں۔
ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو حق کے لیے آگے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے قرآن مجید میں، قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، کیا آپ مسلم بنو اور مرو مت لیکن صرف اسلام کی حالت میں۔ تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب ہو۔ اور جو بھی کوئی حق کی تلاش میں ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے اسے حق تو بے شک ملنا ہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے کو بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرو، کیونکہ آج جتنے بھی آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آج بالکل دھل جاتے ہیں، آپ
بالکل نئی بچی جیسے۔
تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ۔
جی انشاءاللہ۔
ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے۔ ایک ضروری اعلان باقی رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین میں صرف ایک مائک ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر خواتین میں کوئی نان مسلم اور ہوں لائن میں تو ان کو موقع دیا جائے، دو سوال بیک وقت وہاں سے ہوں گے۔
السلام علیکم، میرا نام شویتا اگروال ہے اور میں اعظم کیمپس میں بی ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پچھلے دو سال سے پورے روزے رکھتی ہوں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میں آج یہاں پر پورے لوگوں کو گواہ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک کلمہ پڑھائے اور میرا ایک نام بھی سجیسٹ کرے پلیز۔
الحمدللہ، دنیا کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے۔ اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو اتنی تعداد میں امریکہ میں، یورپ میں خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ اور آج آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون کس سے زبردستی نہیں کر رہا ہے۔ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ ایک خدا میں مانتی ہے؟
ہاں جی، میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ماشاءاللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی آپ سے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟
جی نہیں، میں دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ،
آپ کئی سال سے اعظم کیمپس میں ہیں؟
جی۔
اور اگر کس نے بھی آپ سے زبردستی نہیں کی اور اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔
جی،
میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو
اشہدو
اللہ
اللہ
الہ
الہ
الا اللہ
الا اللہ
واشہدو
واشہدو
انا
انا
محمد
محمد
رسول اللہ
رسول اللہ۔
میں گواہی دیتی ہوں،
میں گواہی دیتی ہوں
کہ اللہ کے علاوہ
کوئی
دوسرا معبود نہیں ہے،
کوئی دوسرا معبود نہیں ہے،
اور محمد
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
آخری پیغمبر ہے،
آخری پیغمبر ہے۔
ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ایک نام سجیسٹ، آپ کا نام کیا فی الحال بہن؟
جی، میرا نام شویتا اگروال تھا۔
آپ کا نام شویتا تھا؟
جی۔
آپ اگر مسلمان نام رکھنا فرض نہیں لیکن اچھی بات رکھنا چاہتے، اور جو میرے ذہن میں اب جو آ سکتا ہے جو سب سے اچھا نام، وہ ہے عائشہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ماشاء اللہ، تو آپ آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔
پلیز میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اسلام آخری دم تک اپنے دل میں رکھ سکوں۔
انشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو اچھا مقام دے اور آخرت میں دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔
جزاک اللہ۔
ہم بھائیوں میں مائک نمبر 1 سے گزارش کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی غیر مسلم بھائی ہو قطار میں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سرینواس، ادھر ہی کیمپس میں ایم اے رنگون والا ڈینٹل کالج کینٹین میں کام کرتا ہوں۔ میں میرا بھتیجا، میرا نام کیتن بوئنا سرینواس اور بھتیجے کا نام وینکٹیش، کیتن بوئنا وینکٹیش۔ ہم دونوں 3 سال سے روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور 3 سال سے اس لیے رکا ہے کہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھانے کے لیے۔
میں ایک سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی مجھے فون کال آئے پہلے بھی، اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو رکیے مت، دل سے مان لیں جب مسلمان ہو جاتے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں لوگ کو کلمہ پڑھاؤں، لیکن آپ کو 3 سال رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس کیمپس کے لیے کہ ماشاءاللہ اعظم کیمپس میں آج 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اعظم کیمپس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے قریب آ رہے اور اسلام قبول کر رہے۔ کئی لوگ مجھے کل بھی ملنا چاہتے تھے، پرائیویٹلی ملنا چاہتے تھے، کہتے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولا بے شک کیجئے، मेरे हाथ से करना जरूरी नहीं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना समझे कोई कि लोग जानबूझ के लोग को पकड़ के लेके आ रहे। मैं सब लोगों को जानता नहीं हूँ, इतनी तादाद में माशाल्लाह लोग इस्लाम कबूल कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि एक खुदा पे मानते?
अल्हम्दुलिल्लाह।
आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
अल्हम्दुलिल्लाह।
आप भी?
जी मैं भी।
आप के ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए?
जी कोई नहीं कर रहा है।
आप दिल से चाहते इस्लाम कबूल करने के लिए?
मैं दिल से चाहता हूँ।
बिल्कुल सही, आप अगर दिल से चाहते तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए इंशाल्लाह।
जी
अशहदु
अशहदु
अल्लाह
अल्लाह
इलाहा
इलाहा
इल्लल्लाह
इल्लल्लाह
वाशहदु
वाशहदु
अन्ना
अन्ना
मुहम्मदु
मुहम्मदु
रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह।
मैं गवाही देता हूँ,
मैं गवाही देता हूँ
के अल्लाह के अलावा
अल्लाह के अलावा
कोई दूसरा माबूद नहीं है,
कोई दूसरा माबूद नहीं है,
और
मोहम्मद
मोहम्मद
सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम
अलैहि वसल्लम
उसके आखिरी पैगंबर है,
आखिरी पैगंबर है।
माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके, माशाल्लाह।
जी शुक्रिया,
आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता मिले, और आपको कोई भी जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, आपको कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, इस्लाम के बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.irf.net। कोई भी तकलीफ़ है बेशक आप पूछ सकते हैं, कोई भी मुश्किलात है, कोई भी आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप बेशक तहकीक करिए उसके बारे में। और हमारा रिसर्च सेंटर है बम्बई में, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुगनी राज चौगनी आपकी तरक्की करे इस दुनिया में और आखिरत में भी।
आमीन सुभान अल्लाह,
आमीन सुभान अल्लाह।
माइक नंबर दो में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं।
सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है, मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और MBA की डिग्री होल्ड करता हूँ, और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक CD मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे QTV के बारे में पता चला और मैं आपको QTV पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, PEACE TV चालू हुआ सर। PEACE TV तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि PEACE TV के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर?
सवाल थोड़ा मुख्तसर करें।
हाँ जी मुख्तसर
ही नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का, इसलिए प्लीज़ आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर।
3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप?
जी नहीं सर, मुझे कुछ PEACE TV के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि PEACE TV से मुसलमान लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस TV थ्रू बगैर इस्लामिक मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर,
और उन्हें उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं। कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पीस टीवी काफ़ी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है और उनके एरिया उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में। आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की, आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5 हजार लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखे और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि वी आर एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का। जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है, करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर, जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का, अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है।
बिल्कुल सही।
आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है?
वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं माशाल्लाह।
काफी देखता हूँ सर।
आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा,
यस सर,
बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर, बहुत कम मुसलमान कह सकते। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं।
थैंक यू सर।
आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है।
सर आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर।
बहुत अच्छा सवाल,
ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा,
दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए
सर। शॉर्ट ही है।
नहीं तो लोग मुझे कहेंगे का मैं ना इंसाफ
नहीं कर रहा हूं। इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है, और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते।
तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में, आप पीस टीवी देख रहे हैं वहां से मालूम सही मिली। आपके जो तीन सवाल आते, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता ना कठपुतलियां, जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुभाना व ताला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो, अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर दो, अल्लाह को फायदा क्या है, अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन, बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है, जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा, इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोजख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं, हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में, हर साल 28 करोड़ रुपीस दे, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है, 28 करोड़, वो बजट भी नहीं सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते, हमारा मन का टीवी, हम आपको एक रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पुणे से कहा गया, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते, ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान है। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और या 200 रुपया और 600 रुपया और 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं, एक आदमी कितना देगा, 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा, हमारा फ्री चैनल है। 5,000 रुपया खर्चा करो 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना। और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं बोलते, पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे, दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का, लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोगों को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर।
सर मैं कोशिश करूंगा सर,
और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे।
कोशिश करता हूँ, थैंक यू सर।
ख्वातीन के हिस्से में अगर कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनाली है, मैं मुस्लिम धर्म में स्वीकार करना चाहती हूँ, मुझे आप सबके सामने कलमा पढ़ाओ।
माशाल्लाह, यहाँ पुणे में तो इतनी तादाद से कबूल करे, जो लोग सवाल पूछने से ज़्यादा कबूल करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, इन लोग ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। जितना लोग इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग। 9/11 के बाद अमेरिका में सिर्फ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में 10 महीने में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। जितना इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही, गैर मुसलमान काम कर रहे, उतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है। आप कितने मुसलमान को मारेंगे? आप हजारों मुसलमान को इंडिया में मारेंगे, हजारों लोग नए मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं खुदा में?
हाँ।
आप एक खुदा में मानते हैं बहन?
हाँ।
आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
हाँ।
आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए?
नहीं।
आप अपने दिल से कर रहे?
दिल से कर।
माशाल्लाह, मैं पढ़ूंगा अरबी में, आप दोहराइए। अशहदु
अशहदु
अल्लाह
अल्लाह
इलाहा
इलाहा
इल्लल्लाह
इल्लल्लाह
व
अशहदु
अन्ना
अन्ना
मोहम्मद
रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह।
मैं गवाही देती हूँ
के
अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं है
और
मोहम्मद
सल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसके
आखिरी
पैगंबर है।
पैगंबर है।
माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके कबूल करे आपके जिहाद को। ये जो खातून, ये जो सिस्टर कर रही, वो जिहाद कर रही है। जिहाद जिद्दोजहद हक के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। असल जिहाद तो ये है। और जो कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर वो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन चाहता है तो बेशक वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुरान मजीद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, मराठी में, जो भी आप चाहते हैं। मैं वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करो, हमें खुशी होगी आपको कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दे। कुरान मजीद सबसे अच्छी किताब है जहाँ से आपको इस्लाम का इल्म हासिल हो सकता है।
ख्वातीन के शोबे में अगर कोई और खातून हो नॉन मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। दूसरा सवाल जी।
अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम दीपाली है, आई एम वर्किंग विद द आईटी सेक्टर। माय क्वेश्चन इज, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ यस, इज इट लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम? थैंक
यू। बहन ने सवाल किया है कि वो आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। आईटी सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो आईटी के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं। बहन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी?
नहीं,
बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत, एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है, भले वो झाड़ू वाला है। वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए।
सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, then a Muslim male can marry her, is that right or wrong? Can he?
जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, if that non-Muslim accepts Islam, तो जायज है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पर इस्लाम पसंद करती है, उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है, ये जरूरी का सब चीज जानने की जरूरत है, पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है।
तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, सो दैट मैरिज विल बी लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम?
बिल्कुल सही, इस्लाम के हालत से भी, दुनिया से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज है।
थैंक यू सर,
मोस्ट वेलकम।
माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं।
Assalamu alaikum sir, I actually know to offer namaz and most of I know 10 to 12 surahs, but since 3 days I'm listening to your lecture, and yesterday my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to the all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation?
आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है। आप बिल्कुल सही कहते, इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुभान व तआला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान। तो सलाह बहुत अहम है, तौहीद के बाद अल्लाह को मानने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह। सलाह इम्पोर्टेंट है, और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर।
या थैंक यू सर।
सवाल और जवाब की नशिश्त यहीं ख़त्म होती है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो, तो आके मिल सकते हैं बाद में।